ओम शांति। अभी हमारे सम्मुख उपस्थित है आदरणीय सपना दीदी जी, तो हम सपना दीदी जी का एक हाथ की ताली से वेलकम करेंगे। वेलकम दीदी जी आपका। आपको ये ईश्वरीय ज्ञान बहुत छोटी आयु में प्राप्त हो गया था और आपने अपनी सीए की डिग्री कंप्लीट करने के बाद लगभग 27 वर्ष पहले अपने इस जीवन को ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित कर दिया और लगभग 12 वर्षों से आप चाइना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बहुत सारे देश विदेश के भी, बहुत सारी कंट्रीज में, भारत के भी काफी स्थानों पर जाकर के आपने बाबा का परिचय दिया है। बहुत सारी जगहों पर कोर्सेस कराए हैं, क्लासेस कराए हैं, बहुत सारी कंपनीज में, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में, ऑर्गेनाइजेशंस में आपने अपना वक्तव्य दिया है। और जो आप सेल्फ मैनेजमेंट, बिहेवियर मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्लीप मैनेजमेंट, ऐसे बहुत सारे मैनेजमेंट की ट्रेनिंग देते हैं वो आपने दी है। और मेनली आपने वहाँ पर उन आत्माओं को परमात्म परिचय दिया है। तो आज जो हमारा टॉपिक है कर्मों की गुह्य गति, तो अभी हम दीदी जी सुनेंगे कि हमारे कर्म कैसे हो, कर्मों का प्रभाव हमारे ऊपर कैसे पड़ता है और कैसे हम अपने कर्मों को सुकर्म बनाए। तो कर्मों की गुह्य गति अभी दीदी जी सुनते हैं आदरणीय सपना दीदी जी। ओम
ओम शांति, ओम शांति। यहाँ तो सभी शांति का अनुभव कर ही रहे हैं ना? और आज हम बात करने वाले हैं कर्मों की गुह्य गति। हमने समझा कि मैं कौन हूँ और मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। अब इसके साथ साथ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो हम इस सृष्टि मंच पर अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, हम सभी अलग अलग शरीर का चोला धारण करके आत्मा है जो पार्ट बजा रही है, तो वो पार्ट मुझे ये ध्यान में रहे मेरा हर कर्म, मेरा हर थॉट, हर संकल्प इस तरह से हो कि जो भी हम अपने इस कर्म की रिकॉर्डिंग करें वो अच्छे से अच्छी हो। हम यही चाहते हैं ना, हर व्यक्ति जीवन में सुख शांति चाहता है। और सुख शांति का बीज क्या है? श्रेष्ठ कर्म। तो आज हम समझेंगे, जैसे हम कहते हैं फॉर एवरी एक्शन देर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, देर इज अ रिजल्ट। मतलब जो भी हम कर्म करते हैं उसका फल बनता है। कर्म एक बीज है अगर हम इसे ऐसा कहें, और उसका जो भी आज हम अनुभव कर रहे हैं जीवन में, वो अनुभव जो है किसी ना किसी पूर्व के कर्म का फल है। तो इसको हम दो तरीके से कह सकते हैं कि आज जो मुझे फल मिल रहा है इसका कोई बीज था, ऐसा भी कह सकते हैं, और आज जो हम बीज बो रहे हैं इसका कोई फल अवश्य होगा। तो ये बात है समझने की। आज हम पहले जानेंगे कि तीन प्रकार के कर्म हैं मुख्य रूप से, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, सुकर्म, विकर्म और अकर्म। तीन प्रकार के कर्म हैं, क्योंकि कर्म अभी हम जैसे जैसे हम इस स्पिरिचुअल रास्ते पर चलते हैं, हम आध्यात्मिक मार्ग में एक बात और हमें क्लियर होती है कि कर्म की शुरुआत कहाँ से होती है? थॉट से, मन से, संकल्प से। क्योंकि कोई भी चीज मेरे कर्म में आने से पहले कहाँ आएगी? मेरे मन में आएगी, पहले विचार आएगा, बाद में वो कर्म में आएगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है, हम सोचते हैं कि ठीक है सिर्फ मैंने सोचा ही तो है, किया तो नहीं है ना। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, हमें लगता है कि सोचा ही तो था सिर्फ, लेकिन अभी इसको और अच्छे से अपने संकल्पों पे भी हमको अटेंशन रखते हुए, क्योंकि अभी आज हम जो समझने वाले हैं कि सेम कर्म एक्शन में देखने में तो सेम ही दिखाई दे रहा है, हो सकता है दो व्यक्ति एक ही प्रकार की सेवा कर रहे हैं, एक ही प्रकार का कर्म कर रहे हैं, लेकिन फिर भी भाग्य एक जैसा बनेगा या नहीं बनेगा उसके पीछे बहुत सारी और चीजें उसके साथ जुड़ी हैं। तो पहला है सुकर्म। सुकर्म क्या है? जो भी कर्म हमने सोल कॉन्शियस होकर आत्मिक स्थिति में रह करके शुभ कर्म जो किए वो है सुकर्म, अच्छा कर्म। सिंपल भाषा में अगर कहें तो अच्छा कर्म। अच्छा कर्म उसकी बहुत एक पहचान, सिंपल सी पहचान, जो मुझे भी सुख दे और दूसरे को भी सुख दे। जो हम यहाँ मुरली सुनते हैं ना, तो आज की मुरली में एक शब्द आता है कि जो मुझे भी सुख दे, मैं जिसके साथ मिल करके कर रही हूँ जो कार्य उसको भी सुख दे, और जिसके प्रति कर रही हूँ उसको भी सुख मिले। तो ये चेकिंग हो सकती है ना अपनी, हम ये छोटी छोटी बातों से हम चेकिंग पॉइंट्स भी साथ साथ लिख सकते हैं कि मैंने जो कर्म किया वो सुकर्म था। सबसे पहली बात, सोल कॉन्शियस होके किया, आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के किया कि मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा कर रही हूँ। तो जरूरी बात है कि वो गलत तो हम कर ही नहीं पाएंगे ना, जब दूसरे को भी आत्मा देख करके कर रहे हैं और स्वयं भी आत्मिक स्थिति में है। फिर दूसरा है विकर्म, नेगेटिव कर्म जो है। नेगेटिव कर्म कैसे हैं? जब हम बॉडी कॉन्शियस में, देह भान में, मैं फलाना हूं, मेरा नाम मान पोजीशन, उस स्थिति में स्थित होकर के अगर करेंगे कर्म तो उसमें क्या होगा? एक्सपेक्टेशन भी होंगी, इच्छाएं भी होंगी, मुझे फिर इसके रिटर्न में कुछ मिले ये थॉट भी रहेगा। तो चाहे देखने में वो कर्म कुछ भी लग रहा हो लेकिन वो विकर्म के खाते में चला जाएगा अगर उसके पीछे भाव, भावना शुद्ध नहीं है। और शुद्ध भावना कहाँ से शुरू होती है? सोल कॉन्शियस स्थिति से, आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के जो कर्म करते हैं। तो विकर्म जैसे फिर उसमें क्रोध भी आएगा, फिर उसमें लोभ भी आएगा, उसमें बहुत सारे और नेगेटिव प्रभाव हमारे कर्म के ऊपर आएंगे। फिर तीसरा है अकर्म। अकर्म मतलब न्यूट्रल एक्शन, ना उसका पॉजिटिव उसका कोई फल है ना उसका कोई नेगेटिव फल है। ऐसा हो सकता है क्या? अब कर्म तो हम जो भी करेंगे उसका कोई ना कोई फल तो मिलेगा ना, तो अकर्म फिर कैसे हुआ जिसका कोई फल ना बने आगे? निमित्त बन के कर रहे हैं तो वो तो शुभ कर्म, शुद्ध कर्म हो गया, तो उसका आपको भाग्य की प्राप्ति होगी। अकर्म है जिसका कोई फल नहीं है। अब जो जैसे आपने बीज बोया, बीज बोया तो फल निकला, तो वो हो गया सुकर्म, बीज बोया उसका फल मिला। अब फल जो आया मेरे हाथ में वो मैंने खाया, फल खाना भी तो कर्म है ना, लेकिन फल खाने का कोई आगे फल नहीं है। तो जो फल खाने वाला कर्म है वो अकर्म है, क्योंकि उसका आगे कोई रिजल्ट नहीं है, वो फिनिश हो गया, वहीं समाप्त हो गया। तो इसीलिए अगर आपने अभी सृष्टि चक्र को समझा है तो सृष्टि चक्र के हिसाब से अभी कौन सा समय चल रहा है? संगम युग का समय चल रहा है, जो बीज बोने का समय है। इस समय सुकर्म द्वारा बीज जब हम बोते हैं उसका फल हमको जब सतयुग में मिलता है, तो सतयुग में जो हमारे कर्म होंगे वो कैसे होंगे? अकर्म, क्योंकि वहां पे फल खाने का समय है, अभी बीज बोने का समय है। तो अभी हम कुछ कर्म के सिद्धांत, कर्म के कुछ रूल्स समझेंगे। जैसे जीवन, जैसे कोई भी चीज आप लेते हैं उसकी रूल बुक होती है ना, हर चीज की रूल बुक होती है। या कोई मशीन भी खरीदते हैं तो उसकी भी एक मैनुअल होता है, उसके अंदर जो गाइड करते हैं आपको कि इसको कैसे चलाना है, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे करना है और क्या नहीं करना है। हर चीज का रूल होता है ना, अगर आप ठीक से नहीं चलाएंगे तो वो मशीन खराब हो जाएगी। तो ये एक हमारी लाइफ को, हमारे जीवन को जो एक मैनुअल है, कर्म का मैनुअल जो हमें गाइड करता है, वो समझना बहुत जरूरी है ताकि उस पर अटेंशन देते हुए हम अपने कर्म को श्रेष्ठ कर्म बनाएं। तो सबसे पहला है ईच ऑफ माई एक्शन इज अकाउंटेबल, मतलब मेरे हर कर्म का छोटा या बड़ा उसका हिसाब किताब बनता है। हर कर्म का, चाहे किसी ने देखा किसी ने नहीं देखा। कभी कभी ऐसा भी किसी को संकल्प आ जाता है कि किसी ने तो देखा नहीं, लेकिन हर कर्म का आत्मा कर रही है शरीर के द्वारा और उसके अंदर वो रिकॉर्डिंग हो रही है और वो ऐसी, उसका अकाउंटिंग ऐसी है, उसका हिसाब ऐसा है कि साथ के साथ उसका रिजल्ट भी निश्चित हो रहा है। तो मेरा हर कर्म उसका हिसाब किताब बनता है, ये याद रखना बहुत आवश्यक है। दूसरा है माय पास्ट अफेक्ट्स माय प्रेजेंट, मतलब मेरा जो पास्ट है, जो पूर्व में मैंने जो भी किया है, उसका प्रभाव मेरे प्रेजेंट पर होगा, चाहे मुझे याद है या नहीं है। इसमें कोई भी ये बात मैटर नहीं करती है कि मुझे तो याद नहीं मैंने कब किया था। अभी किसी ने किसी को दुख दिया और दुख दे करके भूल गया कि मैंने तो ऐसे ही बोला था, मैंने तो मजाक किया था, ऐसा कह देते हैं ना कई बार, मैंने तो यूं ही बोल दिया था, लेकिन सुनने वाले को कष्ट पहुंचा, उसको दुख हुआ और उसको तो शायद 5 साल 10 साल तक भी वो बात याद रही, और अभी वो आकर के जब वापस आपके सामने वो बात आती तो कई बार हम कहते हैं मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन अगर प्रेजेंट में मेरे सामने कोई भी परिस्थिति ऐसी आ रही है जो मेरे दुख का कारण बन रही है, मेरे हाथ में नहीं है बहुत सारी चीजें जो मेरे हाथ में नहीं है, कहीं पर कोई नुकसान हो जाता है, कहीं परिवार में कोई ऐसा झगड़ा हो जाता है, कोई भी तरह की दुख लाने वाली परिस्थिति जो आती है, तो मुझे ये समझना जरूरी है कि कोई ना कोई पूर्व का, पास्ट का कोई कर्म है मेरा किया हुआ, ये मेरे सामने आया है। नहीं तो हमारे को अंदर यही संकल्प चलता है ना, मेरे साथ ही क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो किसी के साथ बुरा नहीं किया है। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, मैंने तो नहीं किया है। लेकिन कर्म फिलॉसफी, कर्म का सिद्धांत बहुत एक्यूरेट है, अगर किया है तभी आ रहा है। लेकिन अब इसको आगे मुझे कैसे ठीक करना है वो भी हम समझेंगे, पर पहले इन सिद्धांतों को समझते हैं। आई गेट व्हाट आई डिजर्व, मतलब मैं जो डिजर्व करती हूँ, मैं जिस चीज के काबिल हूं या लायक हूं, वो चीज मुझे मिलेगी ही, आज नहीं तो कल। अगर वो चीज आज नहीं मिल रही है, इसका मतलब अभी तक मैं डिजर्व करती नहीं हूं, या फिर कोई ना कोई मेरे कर्म की ऐसी ब्लॉकेज है बीच में उस रास्ते में, जिसको मुझे क्लियर करना जरूरी है। तो ये मान के, ऐसा इस ड्रामा में, इस खेल में कोई भी चीज, कोई भी बात ऐसी नहीं है जो इनजस्टिस की हो। कभी कभी ऊपर से हमें लगता है ये तो इनजस्टिस है, मिलना तो मुझे चाहिए था, मिल उसको गया। होता है कई बार ऐसी परिस्थितियां, किया तो हमने था, हमें तो किसी ने बोला नहीं, लेकिन एप्रिसिएशन दूसरे को मिल गया, फल उसको मिल गया। तो ये यहां पर हमें समझना है, इस बात को बहुत सूक्ष्म रीति से समझना है। मैंने जो किया था वो मेरा जमा हुआ, ठीक है, वो मेरा जमा हुआ, वो कहीं पर भी कुछ भी व्यर्थ नहीं हुआ, कुछ भी वेस्ट नहीं हुआ। तो जो मैंने कर्म किया वो जमा हो ही रहा है, कोई ने देखा नहीं देखा। अब उस आत्मा को जो मिला वो उसका भी तो जमा किया हुआ भाग्य है ना, हो सकता है उसने पहले जमा किया हुआ है, आज वो खा रहा है, तो अभी उसका कौन सा एपिसोड चल रहा है वो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे सिर्फ अपना ये देखना है कि मुझे जो मैंने कर्म किया उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। Nothing happens by chance. कोई भी चीज by chance नहीं होती इस जीवन में। कि बाय चांस ऐसा हो गया मुझे कोई मिल गया, बाय चांस ऐसा हो गया कि हम वहां पहुंच गए उसी टाइम पर और मुझे ये मिलना हो गया किसी से, या मुझे कोई जॉब मिलनी थी, बाय चांस ऐसा हुआ कोई आया ही नहीं इंटरव्यू के लिए, सिर्फ मैं ही पहुंचा ना। कई बार ऐसी ऐसी परिस्थितियां होती है ना, जॉब में एक ही वैकेंसी थी, बारिश हो गई, मौसम खराब हो गया, कोई और पहुंचा ही नहीं, सिर्फ हम ही पहुंच गए और बाय चांस मुझे मिल गई जॉब। इट्स नॉट बाय चांस, कुछ भी बाय चांस नहीं है, हर चीज का, हर कर्म का फल है ना, तो हर फल का रीजन है पीछे, पीछे मेरा जमा किया हुआ है, नथिंग इज बाय चांस। तो ऐसे ही जैसे मेरे साथ भी बाय चांस नहीं है, दूसरे किसी के साथ भी कुछ हो रहा है वो भी बाय चांस नहीं है। हर हम अपने कर्म की कलम से अपना भाग्य निरंतर लिख रहे हैं, निरंतर लिख रहे हैं। नो वन कैन स्नैच अदर्स फॉर्चून, मतलब किसी का भाग्य कोई छीन नहीं सकता, मेरा भाग्य कोई भी और छीन नहीं सकता, या फिर ऐसा कहें जो मेरे भाग्य में है वो मुझे मिलेगा ही, कोई ले नहीं सकता। जो मेरे भाग्य में नहीं है फिर वो फिर कोई दे नहीं सकता, कोई कितनी भी कोशिश करे, कितना भी मुझे फेवर करने की भी कोशिश करे, लेकिन अगर वो चीज मेरे भाग्य में नहीं है तो वो मुझे मिल नहीं सकती। लेकिन इसको अच्छे से समझना है, ऐसा नहीं कि अगर भाग्य में नहीं है, मिलना ही नहीं है, तो फिर मेहनत क्यों करनी है। भाग्य की कलम क्या है? कर्म। तो मैं अपना भाग्य अपने कर्म से लिख रही हूं, किसी के फेवर से, किसी की मदद, वो भी मुझे अपने भाग्य से मिल रही है क्योंकि मैंने वो कर्म जमा किए हुए हैं। इसीलिए राइट टाइम पे मेरे सामने वो व्यक्ति, कोई मदद करने वाला भी आ जाएगा, नहीं तो कैसे मिलेगी। तो इसीलिए हर चीज जो मेरे भाग्य में होगी वो कैसे भी करके मेरे सामने राइट टाइम पर पहुंच जाएगी क्योंकि वो मैंने जमा किया हुआ है। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई प्रेजेंट स्टेट, ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है सारे रूल्स में से। अभी हम बात कर रहे थे पास्ट की, अब पास्ट में तो जो हमने किया, पास्ट चाहे हमने पिछले साल किया था या चार दिन पहले किया था या पिछले जन्म में किया था, ये सभी पास्ट है ना। जो पास्ट है वो तो अब हो गया, उसका तो मुझे सिर्फ फल सामने आएगा, लेकिन मेरे हाथ में क्या है, मेरे कंट्रोल में क्या है, आज मेरा प्रेजेंट। तो आज मेरी तरह से मेरे, अगर जो चीज मेरे हाथ में है, जो चीज मेरे कंट्रोल में है, तो उसमें फिर मेरी जिम्मेवारी भी मेरी सबसे ज्यादा है ना। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई प्रेजेंट स्टेट, मतलब आज मैं जो करूंगी उसके लिए मैं जिम्मेवार हूं। आप आए, कोई व्यक्ति मेरे जीवन में आया, चैलेंज लेकर आया, मेरे लिए प्रॉब्लम्स लेकर आया, मेरे लिए कुछ भी उसने गलत किया, जो भी हुआ, एक तो इसमें दो चीजें हैं, उसका कर्म और दूसरा मेरे पास्ट के कर्म, उसकी वजह से मेरे सामने ये परिस्थिति आई। फिर चाहे कोई बीमारी के रूप में आई, जो बिजनेस में लॉस हो गया, या कोई भी और परिस्थिति आई उसमें आई, लेकिन अब उस परिस्थिति में मैं आज क्या एक्शन लेती हूं वो तो मेरे हाथ में है। मैं उसमें दुखी होती हूं या मैं सोच करके, उसमें विचार करके मैं अब उसका सॉल्यूशन ढूंढती हूं, ये तो मेरा प्रेजेंट कर्म है ना। अब क्या करना है वो तो मेरे हाथ में है ना, जो हो गया वो मेरे हाथ में नहीं है। तो मुझे सबसे ज्यादा अटेंशन किस बात पे देना है, अभी, प्रेजेंट, आज। तो ये जो अभी है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कर्म के सिद्धांत में, कि आज मुझे अब अच्छे से अच्छा अपना भाग्य लिखना है। अभी तो मुझे समझ में आ गया ना। अब कर्म सिद्धांत को लेकर के जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं लोगों के मन में, ये बहुत जरूरी है समझना। सबसे पहला कि मेरे भाग्य के लिए, मेरा भाग्य तो भगवान ने लिखा है, अब जो लिख दिया भाग्य में वही होगा, अभी हम क्या कर सकते हैं। ब्लेम किसके ऊपर डाल दिया, भगवान के ऊपर। क्योंकि हमको आदत पड़ गई है ना ब्लेम करने की, कि दूसरे के ऊपर डाल दो और उसमें भी भगवान के ऊपर डाल दो तो सबसे आसान है, भगवान ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, भगवान की मर्जी थी। अब सोचने की बात यह है, हमने समझा है ना परमात्मा कौन है, हमारा मात पिता है। कोई भी मात पिता अपने बच्चे के भाग्य में कुछ गलत लिखेंगे। यहाँ पे भी आप सब बहुत सारे मात पिता है ना, अपने लौकिक में भी अगर आपको अथॉरिटी दे दी जाए कि आप अपने बच्चों का भाग्य खुद लिख सकते हैं, तो आप उसमें लिखेंगे कि फलानी तारीख को उसका एक्सीडेंट हो जाए, लिखेंगे कि उसका नुकसान हो जाए, वो पढ़ाई में फेल हो जाए? कभी भी नहीं, स्वप्न में भी सोच नहीं सकते कि अपने बच्चे के लिए कुछ गलत संकल्प भी करें। तो भगवान जो सुप्रीम फादर है, क्या वो मेरे भाग्य में कुछ गलत लिख सकता है? तो ये कहना ठीक है कि भगवान की मर्जी थी, ये कहना ठीक है मेरे साथ कुछ हुआ, मुझे ये मिसअंडरस्टैंडिंग सबसे पहले क्लियर करनी है कि मेरे भाग्य के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वो तो सिर्फ वो गाइड करता है, शक्ति देता है, लेकिन कलम मेरे हाथ में दी हुई है कि जैसा करोगे वैसा पाओगे। दूसरा फिर वही कि भाग्य में जो होगा वो हो जाएगा, इसीलिए फिर तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये भी हमने समझ लिया कि भाग्य हम बना रहे हैं, हर आत्मा अपना भाग्य स्वयं लिखती है। अब कई लोग वास्तु और वो सब चीजें भी आ जाती हैं बीच में, कि यहाँ पे ना कोई आके बोलेगा ये दरवाजे की डायरेक्शन ठीक नहीं है, इसलिए आपका ना पैसा आ नहीं रहा, जा ही रहा है, कि दरवाजे की डायरेक्शन चेंज कर दो, होता है ऐसे? अब अगर मेरे कर्म अच्छे नहीं है तो दरवाजा क्या करेगा उसमें? अगर मैंने पहले से अपने कर्म अच्छे किए हुए हैं, फिर दरवाजा ठीक है या नहीं है, छोटा है या बड़ा है, डजंट मैटर। क्योंकि ये स्थूल एक चीज क्या मेरे भाग्य को अफेक्ट कर सकती है? लॉजिकली थोड़ा सा सोचें, आत्मा एक चेतन शक्ति है, परमात्मा सुप्रीम पावर है, और ये तो स्थूल चीज है एक, कि ये डायरेक्शन चेंज कर दो तो आपका भाग्य ठीक हो जाएगा। क्यों क्यों हमें वो चीजें अच्छी लगती हैं, इजी लगती है ना करनी, कि ये करना तो आसान है, इधर से तोड़ के इधर बना लिया। लेकिन अब ये कहा जाए कि अपने संकल्पों को चेंज करो, अपने थॉट्स को चेंज करो, वो बहुत मुश्किल लगता है, वो सूक्ष्म है ना। अब ये आपने किसी के लिए अंदर वैर विरोध द्वेष की भावना संभाल के रखी हुई है कई दिनों से, क्या कई वर्षों से। अब कोई कहे जब तक आप इसको नहीं निकालोगे अंदर से, उसको माफ कर दो, फिर आपका भाग्य ठीक होना शुरू हो जाएगा, ये तो बड़ा मुश्किल है, कोई और उपाय बता दो। बाकी सबके साथ हम बात कर लेंगे, लेकिन इसके साथ कोई एक होता है ना ऐसा, तो वास्तव में ब्लॉकेज क्या है? वो नहीं है कि ये दरवाजे की डायरेक्शन ठीक नहीं है, या आपके घर के सामने ये पेड़ है ना, ये सूरज की धूप आने नहीं देता है, इसलिए भाग्य ठीक नहीं चल रहा है आपका। ऐसा कुछ नहीं है, मेरा भाग्य मेरे अपने कर्म और परमात्मा की शक्ति से मैं उन कर्मों को ठीक कर सकती हूँ, ये विश्वास के ऊपर निर्भर करता है। फिर एस्ट्रोलॉजी या और चीजों के हम जाएंगे, किसी को हाथ दिखाएंगे, फिर वो 10 बातें और बताएगा, फिर हम और कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर वो बोलेगा ये उपाय करो वो करो, तो इसी में फिर जो मेन बात थी वो हम फिर भूल जाते हैं, फिर बहुत सारी और चीजें भी होती हैं, ऐसे ब्लैक मैजिक ये वो अपना ठीक करने के लिए लोग फिर कई बार ऐसी चीजों में भी इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन बाबा ने, भगवान ने हमें बहुत सहज रास्ता बताया है कि सिर्फ आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के अपने संकल्पों को शुद्ध करते हुए अपने कर्म की कलम से अपने श्रेष्ठ भाग्य को हम लिख सकते हैं, और ऐसा अभी समय चल रहा है। अभी आप देखिए और क्या क्या है जो मेरे कर्म जैसे हमने कहा कर्म बीज है और उसका फल हमको मिलता है, लेकिन जैसे बीज डालते हैं तो उसके साथ और चीजें भी होती है ना। जैसे बीज बोया आपने, उसके बाद अगर आपने ठीक से पानी नहीं दिया, उसको धूप नहीं मिली, तो फिर उसकी ग्रोथ जो है, उसका जो फल उतना अच्छा नहीं रहेगा। तो इसमें सबसे पहला क्या है, इंटेंशन। कर्म के पीछे मेरा भाव क्या है, भाव और भावना। जैसे चाहे हम कोई दान कर रहे हैं, कहते हैं दान पुण्य, लेकिन हर दान का पुण्य नहीं बनता है। दान किया अगर मैंने इस भाव से किया उसके पीछे कि लोग समझें कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, और फिर हमने दिखा के किया, क्योंकि अगर ये भाव होगा तो फिर हम 10 लोगों के सामने करेंगे, कुछ देंगे ना, तो ऐसे उस समय देंगे जब कोई देख रहा है। कोई सेवा भी करेंगे, कोई कोई का होता है ना ऐसा, सेवा भी करेंगे, वो पहले इंतजार करेंगे कि कोई लोग आ जाएं, थोड़ा देख लें कि मैंने सेवा करी है। तो वो क्या हुआ, जो मैं किया तो सही, सेवा करी, कर्म किया, लेकिन अब जिन्होंने देखा उसने आपको अप्रिशिएट किया, दिल में उसने आपको प्रशंसा किया, दिल में किया, बोल के भी किया, तो वो प्रशंसा के लिए ही हम कर रहे थे ना। जो अगर वो उसी थॉट से कर रहा था इंसान, तो उसके अंदर अब वो मिल गई प्रशंसा, तो जो किया था उसका फल साथ के साथ फिनिश, पूरा हो गया, जमा नहीं हुआ। तो इसलिए कर्म का फल बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। अगर कर्म मुझे जमा करना है उस, नहीं तो एक बीज से कितने फल निकलने वाले थे, उस पेड़ पर कितने फल लगने थे। बीज तो गुप्त होता है ना, और जब बीज गुप्त होता है तो फिर उस पे बहुत सारे फल लगते हैं। फिर उसके साथ क्वालिटी ऑफ एक्शन, एक होता है कि मुझे कोई ड्यूटी, समझो मुझे कोई कार्य मिला, ड्यूटी मिली, तो एक होता है काम चलाओ, काम पूरा करने, कई लोग ऐसे होते हैं ना, काम पूरा करने वाला काम, जब कोई नहीं देख रहा है तो चलो थोड़ा थोड़ा कर दिया, पूरा कर दिया नाम का। और एक है दिल से करना, और अच्छी तरीके से जो चीज कर रहे हैं तो फिर उसे अच्छे से करना है। तो क्वालिटी ऑफ एक्शन, किस क्वालिटी का कर्म किया है, वो भी हमारे उसके ऊपर भी फल निर्भर करता है। फिर है फोकस, फोकस मेरा पूरा उस पर है या मेरा ध्यान इधर उधर है, दूसरी चीजों में है। सही समय पर, टाइम फैक्टर बहुत जरूरी है, जिस समय जिस कार्य की आवश्यकता है उस समय अगर हम करते हैं तो उसका फल ज्यादा होगा। अभी किसी को प्यास लगी है, उसको पानी अभी चाहिए, उसको बोलो जरा रुको, एक घंटे बाद देते हैं। उसी वक्त जब उसे प्यास लगी थी आपने तुरंत दिया, तो उसका भाग्य आपका ज्यादा जमा होगा। तो कोई भी कार्य में जिस वक्त सहयोग की जरूरत है उस वक्त सहयोग दिया, सही समय पर सहयोग दिया, सही समय पर वो कर्म किया, उसकी इंपॉर्टेंस है। सही समय पर बरसात होती है तो फसल अच्छी होती है। अब जब फसल काटने का टाइम आ गया, उस समय बरसात हुई, उस समय हम जा रहे हैं पानी डालने, कहा तो पहले गया था पानी डालने के लिए, उस समय तो डाला नहीं, बाद में डाला और बोले आपने ही तो कहा था पानी देना है। कहा तो था लेकिन कब कहा था, किस परिस्थिति में कहा था। तो फिर वातावरण, जिस वातावरण में जैसे कर्म की आवश्यकता है उस वातावरण में वो कर्म हम जब करते हैं, उस सराउंडिंग्स में वो देख करके, परख करके, तब उसका सही फल निकलता है। अब कोई चीज इस परिस्थिति में ठीक है लेकिन दूसरी परिस्थिति में वो ठीक नहीं है, वही बोल, कोई दुख का, दुख की घड़ी चल रही हो, अब समझो कोई का एक्सीडेंट हो गया, आप उसको देखने गए हॉस्पिटल में, और उसको जाकर आप ज्ञान सुना रहे हो, देखो तुम्हारे कर्मों का फल है, बात तो आपने ठीक बोली है कि कर्मों का फल है, लेकिन परिस्थिति ठीक नहीं थी। इस सिचुएशन में आप उसको ये बोलेंगे कि कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा? ये थोड़े बोलेंगे तुमने ही कुछ किया होगा कर्म, इसीलिए तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है। फिर बोलेंगे बात तो हमने कोई गलत बात तो नहीं बोली, ठीक ही तो बोली है, बात तो ठीक बोली है, लेकिन टाइम और परिस्थिति, समय और परिस्थिति देखकर हम जो बोल बोलते हैं और कर्म करते हैं उसका फिर सही फल बनता है। बीज डाला, उसको धूप भी सही समय पर मिले, पानी भी सही समय पर मिले, फिर उसको अगर कोई और खाद की जरूरत है वो भी मिले, तब उसका फल सही निकलेगा। तो कर्म की फिलॉसफी से हमको क्या रियलाइजेशंस होती हैं? एक एक बात सुनाती हूं मैं उससे पहले। एक बार ना एक नई नई बहू, जैसे शादी हुई उसकी और वो एक गांव से दूसरे गांव में गई। जिस घर से गई थी वो भी बहुत अच्छी वेल्दी अच्छे परिवार से गई थी, और जिस घर में गई वो भी, लेकिन अंतर ये था कि जिस घर से वो गई थी वो बहुत दान पुण्य करने वाला उनका संस्कार था, और जिस घर में गई वो थोड़ा कंजूस थे, जल्दी से किसी को दान नहीं करते थे। तो एक दिन वो छत पे बैठी थी और रास्ते से एक फकीर गुजरता है और गुजरते हुए आवाज देता है, 3 जन्म का भूखा हूं, कुछ रूखा सूखा हो तो दे दो। उसका बहुत दिल करता है, क्योंकि संस्कार है ना दान पुण्य का, उसका दिल करता है मुझ कुछ करूं, लेकिन उसके हाथ में नहीं है। वो फिर से आवाज देता है, 3 जन्म का भूखा हूं, कुछ खाने को हो तो दे दो। अब जब वो 2 बार बोलता है, उसके दिल में है, उससे रहा नहीं जाता है, तो वो ऊपर से ही जवाब देती है उसको कि हम भी बचा कुचा ही खा रहे हैं, कल उपवास करेंगे। हम भी बचा कुचा खा रहे हैं, कल उपवास करना पड़ेगा। अब वो तो चला गया फकीर, लेकिन उनके घर के परिवार के लोगों ने सुना तो उनको बहुत गुस्सा आया कि हम इसको सब कुछ तो दे रहे हैं और ये कह रही है हम बचा कुचा खा रहे हैं। तो वो इतने में उनको इतना गुस्सा आया कि उन्होंने सबको इकट्ठा कर लिया, सब बड़े बुजुर्ग बैठ गए और उसको सवाल किया कि ऐसे कैसे तुम हमारी इंसल्ट करा रही हो, ऐसे तो बाहर ऐसे बोलना अच्छी बात है क्या? तो उसने कहा आप ध्यान से पहले सुनिए कि उसने क्या कहा था। उसने कहा 3 जन्म का भूखा हूं और कुछ बचा कुचा हो तो दे दो। 3 जन्म का माना पास्ट में, पिछले जन्म में मैंने दान पुण्य नहीं किया, इसलिए अभी इस जन्म में फकीर हूं, कुछ है नहीं मेरे पास। अब कुछ है नहीं तो आगे भी कर नहीं सकता, तो अगला जन्म भी ऐसा ही होगा, इसलिए कहा 3 जन्म का भूखा हूं। तो मैंने भी कह दिया बचा कुचा खा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास तो सब कुछ है, लेकिन ये पास्ट का जमा किया हुआ आज खा रहे हैं। अगर आज हम दान नहीं कर रहे हैं तो फिर कल उपवास ही करना पड़ेगा ना, कल उपवास करेंगे, क्योंकि ये तो हम सिर्फ खा रहे हैं, खा के खत्म हो गया, आगे जमा नहीं किया तो फिर क्या होगा। तो जो रियलाइजेशन है कर्म फिलॉसफी में, ये सिंपल रूल्स अपने पास लिख लेंगे, नो एफर्ट नो रिजल्ट। मतलब अगर हमने कोशिश नहीं की है, पुरुषार्थ नहीं किया तो कोई फल नहीं है, पुरुषार्थ नहीं तो फल नहीं, भाग्य नहीं, पुरुषार्थ से भाग्य है। कई बार हम भाग्य को आगे रख देते हैं ना, भाग्य में होगा तो होगा, नहीं, पुरुषार्थ पहले फिर भाग्य। पास्ट इज पास्ट, अभी तक जो किया, अच्छा किया बुरा किया, अनजाने में भी कई बार कई कर्म होते हैं, जो हो गया वो हो गया, पास्ट इज पास्ट, अभी उसको फुल स्टॉप लगाकर आगे बढ़ना है। अगर आज भी पास्ट में समझो कोई भूल हो गई, कोई गलती हो गई, हमने कुछ बोल दिया, वो उसकी माफी मांग लो और जल्दी से उसको पूरा करके आगे चलो। अगर हम सोचते रहें आज मैं कल कुछ किया था, आज मैं उसके बारे में सोचती रहूं, तो मैंने आज भी तो वेस्ट कर दिया ना। आज तो कुछ श्रेष्ठ कर सकते थे, उसी के बारे में सोचकर, चाहे किसी और के कर्म को या अपने कर्म को सोच सोच कर फर्दर टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना फिर तो हम। तो इसीलिए अभी मुझे और टाइम वेस्ट नहीं करना है, फुल स्टॉप लगाया, आगे बढ़े। एंजॉय द प्रेजेंट मोमेंट, अभी जो समय चल रहा है इसमें मुझे अपना भाग्य लिखना है ना अच्छे से। अच्छा, तो इसमें मुझे दुख नहीं फील करना, चाहे परिस्थिति कैसी भी है। अगर हम इस बात को समझेंगे कि जो भी आई बात, अगर ये मेरे पास्ट के कर्म का फल है, तो ये अच्छा हुआ ना, फल मिल गया, पूरा हो गया, तो ये तो खुशी की बात है ना। दुख की बात आई, कष्ट आया, प्रॉब्लम आई, तो इसका मतलब मेरा कोई पाप कर्म था जो कट गया। और अगर मेरा पाप कर्म कट गया तो दुखी होना चाहिए या खुश होना चाहिए? और ये एक बहुत सुंदर नियम है कि अगर हम दुख में भी दुखी नहीं होते हैं तो वो दुख जल्दी कटता है। ये हमेशा याद रखेंगे, दुख की बात में दुखी नहीं होते हैं तो जल्दी कटता है। क्यों? क्योंकि अगर हम दुखी होते हैं तो हम उसमें नेगेटिव सोच रहे हैं ना, या किसी के बारे में सोच रहे हैं, इसने मेरे साथ ऐसे कर दिया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। तो जो हम सोच रहे हैं, व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प चला रहे हैं, उसका भी तो वाइब्रेशन बन रहा है। और दुखी होंगे तो दुखी करेंगे भी। जो दुखी होगा वो मुस्कुरा तो नहीं सकता है, जो दुखी होगा उसका स्नेह का बोल भी नहीं निकलेगा, तो फिर क्या होगा, कोई ना कोई कड़वा बोल निकलेगा और फिर एक और बुरा कर्म बन गया। अभी कोई दुख में ऐसे बैठा है ना, उसको आके कोई जरा सा कुछ पूछ ले, सिंपल सा प्रश्न भी पूछ ले, मेरे से मत बात करो, होता है ना ऐसे, ऐसे जवाब देते हैं ना कई बार, तो क्या हुआ, अब उस बेचारे को तो पता नहीं कि आप कौन से संकल्पों में बैठे हो, उसने तो नॉर्मल सा एक क्वेश्चन पूछा आपसे, लेकिन आप क्योंकि खुद दुखी थे, खुद हर्ट थे, तो दूसरे को भी हर्ट करेंगे, और किया तो अब एक और कर्म बन गया, कटेगा कैसे फिर। तो इसलिए भविष्य तो अभी भी मेरे हाथ में है, फ्यूचर इज स्टिल इन माय हैंड्स, पास जो हुआ हुआ, प्रेजेंट मेरे हाथ में है और भविष्य भी। तो ये सोचने के बजाय, जैसे परिस्थिति आई, ये सोचने के बजाय पता नहीं मैंने कौन से कर्म किए हुए हैं, क्योंकि इसी पॉइंट को भी अप्लाई कैसे करना है वो भी तो सोचने की बात है ना। जैसे हमने समझ लिया कि कोई पास्ट में किया होगा कुछ, फिर उसको यूज कैसे करते हैं, बड़ा दुखी होकर के, पता नहीं मैंने कैसे कर्म किया है, नहीं, जो किए फुल स्टॉप, अभी भविष्य मेरे हाथ में है, ये खुशी की बात है ना, ये तो गुड न्यूज है ना कि भविष्य अभी भी मेरे हाथ में है। और बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, डोंट कंपेयर, मुझे अपने को किसी के साथ भी कंपेयर नहीं करना है। हर आत्मा की स्टोरी अलग है और ये एक जन्म की नहीं, कई जन्मों की कहानी है, तो हर एक की स्टोरी अलग है, हर एक की स्क्रिप्ट अलग है, हर आत्मा के कर्म अलग है, कर्म अलग है तो भाग्य भी अलग है। हम उसका सिर्फ एक चीज देखते हैं, कई बार होता है ना, हमने एक ही चीज में दो लोगों ने सेम जैसा एफर्ट डाला, सेम मेहनत करी, लेकिन फल अलग अलग निकला, क्योंकि हम तो सिर्फ उस कर्म को देख रहे हैं, फिर हम सोचेंगे मेरा भाग्य ऐसा क्यों, लेकिन उसकी भी कई जन्मों की कहानी है, मेरी भी कई जन्मों की कहानी है। तो किसी भी और आत्मा के साथ मुझे कंपेयर नहीं करना, ये अपने आप को बार बार याद कराना जरूरी है, क्योंकि कंपैरिजन में दुख है। और कंपैरिजन में दो ही चीजें होती हैं, या तो दूसरा मेरे से बेटर है या फिर मेरे से नीचे है। अगर मेरे से बेहतर होगा तो मुझे फिर कॉम्प्लेक्स आएगा, मुझे बुरा लगेगा फिर, या फिर जेलसी होगी। और अगर मैं दूसरे से बेहतर हूं किसी चीज में तो फिर ईगो आ जाएगा। दोनों ही चीजें ठीक नहीं है ना। मेरी स्व उन्नति के लिए दोनों ही केसेस में कंपैरिजन ठीक नहीं है, किसी से मुझे तुलना या कंपैरिजन नहीं करना है। सो डोंट कंक्लूड बेस्ड ऑन एपिसोड इन लाइफ। जैसे हम कोई टीवी सीरियल देखते हैं, आप अगर शुरू से देख रहे हैं उस टीवी सीरियल को तो आपको पूरी कहानी पता है। अभी उसके 20 एपिसोड पूरे हो चुके हैं, अब 21वें एपिसोड में जब आप देख रहे हो तो आपके दोस्त भी आपके साथ में आके बैठ गए जिसने 20 एपिसोड देखे ही नहीं है। अब वो 21वें एपिसोड में आकर के वो देख रहा है और उसे लग रहा है ये तो इसके साथ बड़ा बुरा हुआ। आपको लग रहा है बिल्कुल ठीक हुआ क्योंकि आपने तो 200 एपिसोड देखे हैं और वो सिर्फ एक एपिसोड के आधार पर ये क्या देख रहे हो, इसमें तो कोई लॉजिक ही नहीं है, ये तो इतना अच्छा व्यक्ति है, इसके साथ तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसके साथ तो बहुत बुरा हो गया। और आप उसे समझा रहे हो नहीं आपको नहीं पता है, आपको नहीं पता है, होता है ना, हमें पता है कि ये हमने देखा है, लेकिन उसको क्योंकि वो अपनी आंखों से जो देख रहा है उसके आधार से, और हम कहते हैं ना मैंने अपनी आंखों से देखा है, आंखों से देखा है, लेकिन कितना देखा है, वो इतनी बड़ी खिड़की के इतने से हिस्से में से जो छोटा सा आपको एक व्यू दिख रहा था वो देखा है आपने सिर्फ। तो किसी के भी जीवन की कहानी में से कोई भी एक सीन को देख करके उस व्यक्ति को जज करना, सारी कहानी गलत हो जाएगी और सबसे पहले मेरा कर्म गलत हो जाएगा क्योंकि मैंने गलत जज कर लिया, तो मेरे कर्म के ऊपर इफेक्ट आएगा ना। हमने ओपिनियन बना लिया उस, समझो हमने पहली बार किसी व्यक्ति को देखा, उससे मिले, और उस वक्त शायद वो कुछ उसके सामने परिस्थिति थी और उस परिस्थिति में उसको हमने क्रोध करते हुए देख लिया, एक ही मिनट देखा और उसके लिए हमने ओपिनियन क्या बना लिया, ये तो बहुत गुस्से वाला है। अब हम औरों से मिलते हैं और देखते हैं कि वो कहता है कि ये व्यक्ति तो बहुत अच्छा है और हम मानते ही नहीं है क्योंकि हमने ओपिनियन क्या बनाया, वो जो हमने इतना सा एक सीन देखा उसका, और उसके आधार से फिर हमारा व्यवहार उसके प्रति भी कैसा हो जाएगा, कर्म के ऊपर इफेक्ट आएगा ना उसका फिर। तो इसलिए मुझे किसी को भी, वैसे भी मुझे किसी को जज करने का अधिकार नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि अपने जज बनो, दूसरों के जज नहीं बनो। लेकिन हम करते क्या है, अक्सर लोग क्या करते हैं, दूसरों के जज और अपने वकील, अपनी वकालत बहुत अच्छी करते हैं। मेरे से अगर कुछ गलत भी हो गया ना, वो तो कारण था ना, वो तो बात ही ऐसी थी ना, वो तो उसने बोला था ना, इसलिए उसके लिए हमारे पास कितने सारे लॉजिक होते हैं, कितने रीजंस होते हैं अपनी वकालत। और दूसरे ने अगर एक भी गलती करी, ये तो है ही ऐसा, उसके ऊपर टैग लगाएंगे, ये तो है ही ऐसा। तो इसलिए मुझे किसी का जज नहीं बनना है, अपने कर्म को श्रेष्ठ करना है तो अपना जज बन के बड़ी गहराई से स्वयं को चेक करना है। तो अभी जो कर्मा को, कर्म के हमारे जो बहुत सारे पास्ट में भी हमने क्या क्या किया है हमको याद नहीं है, प्रेजेंट को हम ठीक कर सकते हैं। आज हमें समझ में आता है कि ये प्रेजेंट मेरे हाथ में है, मेरा आज और अभी मेरे हाथ में है, मेरा भविष्य मेरे हाथ में है, लेकिन जो पास्ट में हमने किया है उसको भी तो मुझे क्लीन करना है। तो योग की शक्ति से, परमात्मा की शक्ति से हम उसे भी धीरे धीरे क्लीन कर सकते हैं। तो उसके दोनों तरीके हैं, एक है तो या तो सजा से, या तो सजा का तरीका होता है उस कर्म को भोग करके, पर वो बहुत पेनफुल तरीका है ना, सजा खाना तो किसी को भी पसंद नहीं है। लेकिन दूसरा तरीका, दूसरी विधि है, परमात्मा प्रेम से, योग से, राजयोग की विधि से मैं आत्मा जब परमात्मा के साथ अपना कनेक्शन जोड़ करके उससे शक्तियों का और गुणों का वरदान लेती हूँ, तो उस वरदान से, उससे क्लींजिंग होती है, अंदर की कर्मा की भी क्लीनिंग होती है, और साथ साथ कुछ चीजें हैं जो हमको करनी है, वो है माफ कर देना और माफी मांग लेना। जितना जल्दी हो सके माफ कर देना और माफी मांग लेना, इसको डिले नहीं करना। कभी कभी हमें लगता है, हाँ, क्योंकि मुश्किल लगता है ना, माफी मांगना मुश्किल लगता है कई बार। अगर वो व्यक्ति है आसपास तो पास जाके कह दो, अगर वो नहीं है तो मन से योग में बैठ करके उससे बात करके उसको बोलो कि माफी मांग लो। अच्छा, एक और बात इसमें बहुत गहराई की है, अगर कोई व्यक्ति आपके जीवन में ऐसा है जो बार बार कोई चैलेंज ही लेके आता है, वो हर बार परेशानी लेके आता है, जब आएगा मुस्कुरा रहे हैं, मतलब कोई तो याद आ रहा है ना, ऐसा तो कोई होता है, एक ऐसा होता है जो आपका टेस्ट लेता रहता है बार बार, और आपको लगता है कि हम कुछ इसको कुछ कह भी नहीं रहे हैं, हम तो इसको तंग भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बार बार कुछ ना कुछ ऐसा लेकर आता है और उसी से आपको परेशानी आती है। तो एक चीज समझने की है कि हमने भी कुछ ना कुछ उसको दुख दिए हुए हैं, तो जो अभी वो वापस बदला लेने के लिए, आत्मा जैसे अपना हिसाब लेने के लिए आई है मेरे पास। अब जब कोई हिसाब लेने आए तो उसका हिसाब जल्दी से पूरा कर देना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अगर मैंने, मेरे सामने ये बार बार दुख ला रहा है, इसका मतलब मैंने दुख दिया हुआ है जो मुझे याद नहीं है। याद है या नहीं है, हमने पहले ही समझ लिया कि कर्म का हिसाब तो आएगा, तो अब जो कर्म मुझे याद भी नहीं है उसकी भी माफी मांगनी है। तो जो आत्मा मुझे सबसे ज्यादा दुख दे रही है ना, हम उसके साथ सबसे ज्यादा क्रोधित रहते हैं, लेकिन करना क्या है, उसी को सबसे ज्यादा गुड विशेस देनी है, उसी को माफी मांगनी है, माफी करनी नहीं, माफी मांगनी है उससे, क्योंकि उसके लिए मैंने जो पास्ट में किया हुआ है, अभी मुझे ज्ञान युक्त बुद्धि से समझ में आता है कि मैंने जो किया है, जो मुझे याद नहीं है, मुझे उसके लिए भी माफ कर दो। और ये आप उसको जाकर नहीं कह सकते हैं ना, वो तो फिर वो उस बोलेगा कि ये क्या हो रहा है। तो जब योग में बैठेंगे तो योग में बैठ करके उसकी फेस को सामने इमर्ज करके उससे माफी मन से मांग लेंगे, करेंगे, ये जरूर करना है, उसको क्लीन करने के लिए ये अवश्य करना है ये। और फिर बात आती है पुण्य का खाता जमा करने की, एक है दान, एक है पुण्य। पुण्य कर्म है जो श्रेष्ठ स्थिति में सुख देने के कर्म, वो भी जिस समय जिसको जिस चीज की आवश्यकता है उस समय वो जो दान किया जाता है उसको कहते हैं पुण्य। एक होता है दान, दान मना डोनेशन, कि मुझे लगता है कि मेरे पास बहुत है उसमें से मैंने थोड़ा दान कर दिया, मेरे पास था मैंने कर दिया। पुण्य क्या कहाँ बनता है, उसको क्या जरूरत थी, ये नहीं कि मेरे पास था और मैंने कर दिया, उसको किस चीज की जरूरत है और जिस समय पर जरूरत है उस समय पर मैंने वो चीज दिया, वो है उससे पुण्य का खाता जमा होता है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जब हमने कहा कि हर दान पुण्य नहीं बनता है, क्यों नहीं बनता है, अगर वो दान किसी गलत कार्य में यूज हो रहा है, आपने तो दान कर दिया, किसी भिखारी को भी सड़क में कोई बैठा है उसको आपने, आपको रहम आया, आपने उसे दान कर दिया, आपको लगा मेरा पुण्य जमा हो गया, लेकिन उसने उस धन को मिसयूज किया, उससे कुछ ना कुछ गलत कार्य किया, तो उसने जो पाप का कर्म किया उसमें आपकी भागीदारी बनेगी या नहीं, डेफिनेटली बनेगी। तो इसीलिए बहुत ध्यान से सोच समझ कर दान करना भी बहुत आवश्यक है। सही कार्य में उसको लगाना अपने धन को बहुत जरूरी है, नहीं तो अनजाने में पाप कर्म के भागीदार बन गए। ये नहीं कि मेरा तो भाव अच्छा था, भाव अच्छा था तो चलो उतना पाप नहीं बना, आपने डायरेक्ट नहीं किया, लेकिन आपको पता है किसी किसी कर्म में आपके बिना किए, आप तो दान कर रहे हैं, आपका 50% भागीदारी आपकी उसमें पाप कर्म में बन गई। तो इसलिए चेक करके सही कार्य में लगाते हैं तो उसका भाग्य जमा होता है। तो मेरे हाथ में अभी क्या है, दो चीजें साथ साथ हो रही हैं, जो मैंने पास्ट में बीज बोया था उसका फल जो अभी मेरे सामने है, एक तो वो फल हम भोग रहे हैं, अच्छा या बुरा वो भोग रहे हैं, और दूसरा साथ साथ हम भविष्य के लिए नया बीज भी बो रहे हैं। तो अभी दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं, क्योंकि जब भोगना कोई भी सिचुएशन सामने आई, वो फल आया सामने, अब उसमें मैंने जो भी बोला, जो भी सोचा, जैसा भी संकल्प किया, जैसा मेरा रिएक्शन हुआ, ये क्या हुआ, नया बीज बोया। अब वो जो नया बीज बोना है वो बहुत ध्यान से बोना है। तो मतलब किसी ने मेरे साथ कुछ भी किया लेकिन मैंने बीज अच्छा बोना है, ये अटेंशन, ये मेरा अटेंशन सदा रहे, क्योंकि अब का जो मेरा हर थॉट, हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म नया बीज है जिसका फल मुझे भविष्य में मिलेगा ही मिलेगा, अवॉइड नहीं कर सकते। उसमें हम ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते, उसने ऐसा बोला था तो मेरे से गुस्से से ऐसा निकल गया मेरे मुख से, ये नया कर्म बन गया। उसने किया वो सामने से जो आया, उसमें दो चीजें हो सकती हैं, या तो मेरा पास्ट था या फिर उसका नया कर्म था। अब उसका था तो उसको उसका फल मिल जाएगा, लेकिन मैंने जो रिएक्ट किया वो तो मैंने अपना खाता खराब कर लिया ना, फिर मैंने जो रिएक्ट किया उसमें। तो इसलिए बाकी तो जो भी हिसाब किताब आए उसको मुझे जल्दी से जल्दी खुशी खुशी से पूरा करना है, राइट? जैसे आप अभी बैठे हो, आप, मैंने समझो, मैंने आज ही आपको देखा ना, माता जी सामने बैठे हैं। अब मैं तो व्हाइट साड़ी में हूं, आपने बहुत सुंदर पिंक कलर का, जो भी कलर है, ये बड़ा सुंदर आपने ड्रेस पहना हुआ है। अब मुझे कुछ पैसे की जरूरत थी, मैंने आपको कहा मुझे ना 50,000 चाहिए, आपने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैंने कहा मैं एक मास में आपको वापस कर दूंगी। अब इन्होंने कहा, फेथ में उन्होंने मुझे दे दिया। अब एक मास हो गया, मेरी तरफ से ना कोई मैसेज है ना कोई कॉल है। अब उसके बाद वो चलो ज्यादा से ज्यादा दो मास वो वेट कर लेंगे, दो मास के बाद तो वो मुझे ढूंढेंगे ना, कॉल करेंगे। अब उन्होंने कॉल किया तो मेरा फोन भी बंद है, मेरा फोन भी बंद। फिर इसके बाद वो ढूंढते हैं एड्रेस, ढूंढा तो एड्रेस भी चेंज हो गया है। अब वो छोड़ देंगे क्या, ऐसा कोशिश तो करेंगे ना। अब 50,000 दिया है, हो सकता है 50,000 या ज्यादा भी दिया हो। अब वो ढूंढते 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 पता चला फोन नंबर भी बदल गया, एड्रेस में कोई दूसरे शहर में चली गई। अब ये ढूंढते ढूंढते पहुंच गए मुझे, मेरे पास। उन्होंने डोर बेल बजाई, मैंने दरवाजा खोला। अब मैंने दरवाजा खोला, मैंने पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई है एग्जाम्पल दे रही हूं, ठीक है। अब उस दिन उन्होंने ब्लैक कलर का ड्रेस पहना हुआ है। दरवाजा खोला तो वो बोले मेरे 50,000। मैंने बोला कौन से, कहते वो जो उस दिन आपने लिए थे। और मैंने बोला आपने तो उस दिन रेड कलर पहना हुआ था और मैंने व्हाइट पहना हुआ था, अभी आपने ब्लैक पहना हुआ है, मैंने पिंक पहना हुआ है, मैं क्यों दूं वापस अभी? कोई बात बनती है क्या? बात बनी? कोई लॉजिक है इस बात में? पैसे आपने दिए थे, मैंने लिए थे, मेरे कपड़ों ने थोड़े लिए थे। बात समझ में आई? अब आत्मा है, एक आत्मा का दूसरी आत्मा के साथ हिसाब किताब है। आपने दिया, मैंने लिया, मुझे वापस करना पड़ेगा ना, चाहे मैं ड्रेस बदल लूं या एड्रेस बदल लूं। जब आत्मा चाहे शरीर छोड़ करके दूसरा जन्म लिया तो वो क्या हुआ? ड्रेस बदला, शरीर बदला और एड्रेस बदला, दूसरे एड्रेस पे चली गई। लेकिन ड्रेस ने थोड़े ही लिया था, आत्मा ने लिया था ना। इस आत्मा का उस आत्मा के साथ हिसाब किताब था तो उसको देना ही पड़ेगा। अब वो जब दरवाजा नॉक करती है मेरा किसी भी रूप में आके और मेरे सामने ऐसी परिस्थितियां लाती है तो मैं दे दू ना। अब ये धन का हिसाब हो सकता है, सुख दुख का हिसाब हो सकता है, तो मैं प्यार से दे दूं, नहीं देंगे तो इंटरेस्ट और बढ़ता जाएगा। जितना अवॉइड करेंगे उतना हिसाब किताब बढ़ता जाएगा। तो जितना जल्दी हो सके मैं उसे चुकाऊं और ये क्वेश्चन ना करूं कि ये तो पिछले जन्म का इस जन्म में क्यों मिल रहा है, ड्रेस ही तो बदला है, हम तो वही हैं। हम भूल जाएं चाहे कुछ भी हो, देना तो पड़ेगा। तो इसीलिए वो भी चुकाते जाएं और साथ में नए श्रेष्ठ कर्म हम करते जाएं, ये अभी हमको ये समय बता रहा है। क्योंकि अभी जो समय चल रहा है ये कौन सा समय है? संगम युग का, पुरुषोत्तम संगम युग, कल्याणकारी युग है। ये कल्याणकारी युग क्यों है? क्योंकि इस समय जो हम श्रेष्ठ कर्म करने की समझ हमें स्वयं भगवान दे रहे हैं कि श्रेष्ठ कर्म होते क्या है। जैसे हमने समझा कि जो सोल कॉन्शियस होकर के आत्म अभिमानी स्थिति में जो हम कर्म करेंगे वो श्रेष्ठ कर्म है। हुआ क्या, जैसे द्वापर युग से लेकर के जब हम देह अभिमान में आ गए, हम भूल गए कि हम आत्मा है, तो द्वापर से कलयुग तक भी हमने कोशिश तो की, अच्छे कर्म करने की भी कोशिश की, लेकिन वो श्रेष्ठ कर्म करते करते भी कई बार वो उसका उतना जमा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि देह भान में किया हुआ कर्म श्रेष्ठ हो नहीं पाता है। कहीं ना कहीं या तो उस श्रेष्ठ कर्म का अभिमान आ जाएगा, हम कुछ अच्छा करेंगे हमें लगेगा हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो औरों से अच्छे हैं। तो जैसे ही अभिमान आया तो जो पुण्य बनना चाहिए था वो नहीं बना। तो इसीलिए जितना जमा होना चाहिए था वो नहीं हुआ, तो आत्मा खाली होते होते अब इस स्थिति में आ गई कि बिल्कुल लगभग खाली। तो जिस वक्त परमात्मा आकर के हमें सिखाते हैं कि अब अपने जीवन को श्रेष्ठ पुण्य के खजाने से कैसे भरना है, बिल्कुल सोल कॉन्शियस होके परमात्मा की स्मृति में आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के हम इस वक्त जो कर्म करते हैं ये फिर सुकर्म के खाते में जमा होता है और इसका फल हमको फिर आगे 21 जन्मों तक, 21 जन्म है ना सतयुग में, 8 जन्म है अभी किया या नहीं लेसन, सतयुग में 8 जन्म, फिर त्रेता युग में 12 जन्म, कितने हो गए? 20। और ये अभी आपका हुआ संगम युग का नया जन्म, संगम युगी ब्राह्मण जन्म, पवित्र जन्म, तो ये हो गए 21 जन्म। तो ये इतनी ब्यूटीफुल चीज है कि इस वक्त भी फल मिल रहा है, अभी भी मिल रहा है। जैसे जैसे हम श्रेष्ठ संकल्प भी करते हैं, एक शुद्ध कर्म का सिर्फ थॉट ही किया, साथ के साथ उसका जो इंस्टेंट फल है, प्रत्यक्ष फल भी साथ के साथ मिलता है, और वो क्या है? खुशी। जो कि दुनिया में अभी बड़ी मुश्किल से मिलती है इस वक्त, श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ संकल्प से इसी घड़ी जैसे ही हम सोचते हैं कुछ अच्छा करने का, चेहरे पर मुस्कान आती है। किसी ने मेरे साथ जो भी किया मैंने माफ कर दिया, तो आपको हल्का फील होगा, नहीं तो बोझ तो मैंने लिया ना। क्रोध उसने किया, बुरा उसने किया, और वो सारा कचरा मन में मैंने संभाल के रखा, तो दुख तो मैंने अपने लिए क्रिएट कर लिया। तो इसलिए भगवान हमें क्या सिखा रहे हैं कि हम माफ कर दो, भूल जाओ, अपना पुण्य का खाता अब जमा करो। तो ये जो समय चल रहा है ये बहुत ही वैल्यूबल है, कल्याणकारी संगम युग है, एक का पदम गुड़ा। किसी भी प्रकार से इस वक्त जो हम सेवा करते हैं, तन से मन से धन से मन वचन कर्म, जो भी शुद्ध स्मृति में आत्मिक स्मृति में रह करके हम करेंगे, परमात्मा के डायरेक्शन अनुसार करेंगे, उसका एक का पदम गुणा भाग्य बनाने का यह समय है। इसलिए बोलते हैं इस वक्त जो ये जो बैंक खुली हुई है, भगवान ने एक बैंक खोली हुई है, अभी ये पूरे कल्प में दोबारा नहीं खुलती है, तो इस बैंक में सब चीज जमा होती है, मन वचन कर्म वाणी, सब वचन में वाणी आई, सब कुछ इसमें जमा हो रहा है। तन से हम कुछ करते, मन से करते, धन से करते, तो वो सब अभी जमा होके सिक्योर हो जाता है। लोग इंश्योरेंस कराते हैं ना, लेकिन सबसे अच्छा इंश्योरेंस क्या होता है, जो मैंने श्रेष्ठ कार्य में लगाया वो मेरा इंश्योर होता है। और इंश्योरेंस का मतलब यही होता है ना कि कठिन समय में जब कोई परिस्थिति आए तो वो काम आए। तो आप देखेंगे, ये अनुभव भी करेंगे, जो जो मैंने अच्छा किया है, मैंने अपना जमा कर लिया, इंश्योर कर लिया, बैंक में जमा की बात नहीं कर रहे हैं, ये वाले कर्म के खाते में जो जमा कर लिया, जब ऐसा कठिन समय आता है जिस वक्त सारे दरवाजे बंद नजर आ रहे हैं, अचानक कोई भी हेल्प सामने से आएगी, अचानक ऐसा कोई व्यक्ति आ जाएगा, ऐसी कोई चीज हो जाएगी जो बिल्कुल इम्पॉसिबल लग रही थी वो पॉसिबल हो जाएगी। तो इतना वंडरफुल ये समय चल रहा है, इसलिए जो करना है वो अभी कर लो, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का अभी समय है, एक भी सेकंड व्यर्थ ना जाए। बस यही संकल्प लेकर जाएंगे कि व्यर्थ बातें व्यर्थ चीजें बहुत हो गई, पास्ट फिनिश, अभी सिर्फ और सिर्फ श्रेष्ठ संकल्प श्रेष्ठ कर्म करने हैं। ठीक है, ओम शांति। ये आप बैठिए, हम आप बैठिए प्लीज। इसीलिए बाबा परमात्मा हमें वो शक्ति दे रहे हैं ना, एक तो हमें शक्ति लेनी है हर रोज, अपने आप को भरना है, क्योंकि ये जो भी कर्म के संबंध हैं ये सारे हिसाब किताब के ही संबंध हैं। आपके सामने जो बातें आती हैं, आप उसी परिवार में वही लोग आपके आसपास आएंगे जिनके साथ पूर्व का कोई ना कोई हिसाब किताब होता है, उसमें अच्छा पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, तो दोनों चीजें हैं, और वो इस ऐसे रिश्तों में आएंगे जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। अगर वो पड़ोसी के रूप में आएगा तो आप उसका व्हाट्सएप ब्लॉक करके काम पूरा हो गया, लेकिन जिस घर में रहते हैं उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। क्यों? ये बात सिद्ध करती है कि उसके साथ हिसाब किताब है, पुराना कड़ा है, इसलिए ऐसे रिश्ते में आए। तो पहली बात मुझे ये सीखना है कि मुझे प्रभावित नहीं होना, क्योंकि हम किसी को तो परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, हम स्वयं को कर सकते हैं। जहां कोई चीज मेरे हाथ में नहीं है तो उसमें मेरे पास सिर्फ दो चीज, दो ऑप्शन है मेरे हाथ में, या तो मैं उसमें दुखी होती रहूं या फिर मैं परमात्मा को समर्पित कर दूं। दुखी होंगे तो फिर हम अपना ही नुकसान करेंगे ना, दूसरे का तो फिर भी नहीं हो रहा है कुछ, तो मैं अपना नुकसान क्यों करूं, किसी की भूल की सजा मैं स्वयं को क्यों दूं? तो उसको सोच सोच के तो हम खुद को सजा दे रहे हैं, तो मुझे खुद को सजा नहीं देनी है। मुझे शांत रह के अगर हम अपने आप को परमात्मा से कनेक्ट करके शक्ति लेकर उसको भी ब्लेसिंग्स दो, उसको भी ब्लेसिंग्स का दान दो कि अब जो भी है जैसा भी है उसको भी सद्बुद्धि मिले। कोई मेरी मर्जी से होती है चीज, अच्छा नहीं होती है तो भी हम चेंज तो नहीं कर सकते हैं ना। जहां कर सकते हैं थोड़ा सा बता दीजिए अपना विचार, फिर भी नहीं होता है परेशान नहीं होना है, क्योंकि परेशान होना न होना, सुखी होना या दुखी होना, ये मेरे हाथ में है। अगर मैंने ये दूसरे के हाथ में दिया हुआ है फिर तो हम सुखी कभी हो ही नहीं पाएंगे। अगर मैंने इस चीज पर आधारित किया हुआ है कि आप अगर ऐसे 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 करेंगे तभी हम खुश होंगे, तो फिर तो अपना रिमोट दूसरे के हाथ में दे दिया। राजयोग का पहला लेसन तो यही है कि मुझे अपना रिमोट अपने हाथ में रखना है, ताकि कोई भी आके मेरा मूड ऑफ नहीं कर दे। उसके हाथ में होगा तो वो तो ऑफ करेगा, कभी ऑन करेगा, फिर उसकी मर्जी है ना। ठीक है, ओम शांति।